दूसरा तो इस गीत में आप बहुत कुछ ऐसे सुंदर शब्द सुनेंगे कि ईश्वर जिसको रब कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझने से वो ईश्वर यानी रब हमारे पर मेहरबान हो जाते हैं, हमारे निगहबान बन जाते हैं, निगहबान माना रक्षक, और हमारे रहनुमा बन जाते हैं। तो हम सुनेंगे। प्रकार से परमात्मा हमारे साथ रहे, तो फिर डरने की क्या बात है। तो एक बार हम सब मिलकर ये गीत गाएंगे। सब मिलकर हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अस्मिता बहन जी, अपनी सुरेली आवाज का जादू बिखेरते हुए आपने हम सभी को बहुत सुंदर ये मैसेज दिया। कहा जाता है कायनात का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी चीज का सृजन होना। जब कोई चीज इस प्रकृति में जन्म लेती है, अस्तित्व में आती है, वह पल सबसे खूबसूरत हो जाता है। चाहे नन्ही कोपलों से डेरे साया हो या ताजा ताजा खिला हुआ खूबसूरत सा फूल हो, नव पल्लवित पुष्पों की महकती हुई कारियां हो, सृजन एवं रचनात्मकता इस कायनात की सबसे ज्यादा आनंदित करने वाली स्थिति है। आज जिस हॉल में हम बैठे हैं, यह हॉल हमारे अति प्रिय मातोश्री जगदम्बा मम्मा की स्मृति में बनाया हुआ ये सुंदर हॉल है, जिसका नाम जगदम्बा भवन, और जिस हॉल का आज उद्घाटन भी होने जा रहा है। और आप सभी के आगमन से, हमारे महानुभवों से आज ये मंच तथा ये हॉल भी है, जो धन्य धन्य हो गया है, धन्य धन्य हो गया है। कृपया एक बार अपने लिए ताली तो बजाइए, क्योंकि आपकी उपस्थिति से आज ये हॉल धन्य धन्य हुआ है। और इस मंच पर विराजित सभी महानुभवों में से हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी। इन शुभ हाथों से करने प्रारंभ निवेदन करके बनाया है आपको मेहमान। बहुत प्रतिभाशाली है जिनका ज्ञान, जो किया न जा सके बयान, जो किया न जा सके बयान, ऐसे हमारे मध्य विराजित आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी। आप महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के जोनल इंचार्ज हैं तथा आप राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत समाज सेवा प्रभाग के चेयरपर्सन हैं। आप पिछले 50 वर्षों से भी अधिक वर्षों से इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं। आपके योग्य निर्णय क्षमता तथा दृढ़ निश्चय कार्य क्षमता के द्वारा ही इस विद्यालय को आगे बढ़ने में बहुत सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे महानुभाव हमारे बीच में उपस्थित है जिनसे हम अभी सुनेंगे अपने ईश्वरीय जीवन के अनुभव तथा प्रेरणाएं। आदरणीय राजयोगिनी संतोष दीदी जी,
ओम शांति। आज हम सब विशेष इस जगदम्बा भवन के हाल में उपस्थित हैं, जिस हाल का उद्घाटन आपकी तरफ से हो रहा, क्योंकि जगदम्बा का आपने अभी अभी हमने छोटी सी फिल्म भी देखी, जगदम्बा का परिचय भी सुना, जिनको ही हम प्रेम से स्नेह से सब मम्मा कहते थे। मम्मा की पर्सनैलिटी ऐसी यूनिक थी जो मम्मा को देखने के बाद जीवन परिवर्तन हो जाता था। मम्मा ने अनेक भाई बहनों का जीवन परिवर्तित किया, उसमें से हम भी एक है। जिस समय हमने मम्मा को मुंबई में देखा और मम्मा से मिली, उसी समय मम्मा का जो व्यक्तित्व है उसको देखने के बाद मुझे भी ये प्रेरणा आई कि जीवन बनाना है तो ऐसा ही ऊंचा जीवन बनाना है, क्योंकि खुद के लिए जिए तो क्या जिए, परंतु अगर विश्व कल्याण के लिए जीते हैं तो वो ही सच्चा जीवन। और जब ये समझ मम्मा ने हमको दिया कि ऐसा जीवन बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान को हमेशा प्रकाश कहा जाता है, तो जीवन में जब प्रकाश आ जाता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, क्योंकि हम सब अनुभवी हैं। स्थूल रीति से भी जब अंधकार होता है तो ठोकरें खानी पड़ती हैं, परंतु प्रकाश आने के बाद हम ठोकरों से बच जाते हैं। तो उसी प्रकार अज्ञान के अंधकार में कर्मों की गहन गति को न जानने के कारण हमें जीवन में घड़ी घड़ी ठोकरें लगती है, जिसके कारण दुख और अशांति प्राप्त होती है। परंतु जिस समय हमें कर्मों की गहन गति समझ में आ जाती है, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने की विधि को जब हम जान लेते हैं, तो हमारे को दुख और अशांति से मुक्ति मिलती है। क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति कर्म करने के बाद पछताता है, सोचता है, परंतु ज्ञानी जो है वो कर्म करने के पहले सोचता है। जो भी कर्म करेगा वो सोच के करेगा, जिसके कारण उसका कर्म यथार्थ होता है, युक्तियुक्त होता है और श्रेष्ठ होता है। तो परमात्मा को हमेशा भाग्य विधाता कहा जाता है। परमात्मा के भाग्य का कैसा उदय करना है इसकी समझ हमें देते हैं। और हम सभी के हाथ में, परमात्मा कहता है मैं तो भाग्य विधाता हूं, परंतु हर एक जो भी मनुष्य आत्माएं हैं ये स्वयं का भाग्य स्वयं लिखती है, क्योंकि परमात्मा हमें श्रेष्ठ कर्मों की कलम हमारे हाथ में दे देता है, जिन श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हम अपने भाग्य को ऊंचे से ऊंचा बना सकते हैं। जैसे गीता में भी कहा है कि जीवात्मा ये अपना ही मित्र और अपना ही दुश्मन बनता है, शत्रु बनता है। जिस समय हम खुद को जान लेते हैं, खुदा को जान लेते हैं, तो हम अपने मित्र बन करके श्रेष्ठ कर्म करते हैं। और जिस श्रेष्ठ कर्मों की रिजल्ट ये होती है, हमें भी सुख मिलता है और हमारे संपर्क में जो है उनको भी सुख और शांति मिलती है। तो परमात्मा ये ज्ञान का सागर है, वो आकर के हमें ऐसा ज्ञान देता है जिस ज्ञान के द्वारा हमारे जो पिछले पाप कर्म हैं उनको दग्ध करने की वो युक्ति बताता है। क्योंकि हर एक मनुष्य के जीवन में दो खाते होते हैं, एक पीछे का खाता और एक आगे हमें क्या करना है, कैसा अपना खाता बनाना है कर्मों का, वो हमें सोचना है। तो जो भी हमने आज तक किया है, अगर हमारे से जो भी पाप कर्म हुए हैं उसको दग्ध करने के लिए परमात्मा योग की विधि बताते हैं, क्योंकि योग को अग्नि कहा जाता है। तो जितना जितना हम आत्मा ईश्वरीय याद में रहती है उतने उतने हमारे किए हुए पाप दग्ध होते हैं, और ईश्वर सर्वशक्तिवान होने के कारण उसके द्वारा हम आत्माओं को शक्ति मिलती है श्रेष्ठ कर्म करने की। तो जिस समय पर, क्योंकि आज मनुष्य अपने कर्मों से दुखी होता है और समझता भी है कि हमारे अंदर जो भी बुरी आदतें हैं उनको हमें छोड़ना है, परंतु वो छोड़ने की आज उसमें शक्ति नहीं है, तो ईश्वरीय याद के द्वारा और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा उसको वो शक्ति मिलती है, वो युक्तियां मिलती है कि किस रीति से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने जीवन में दिव्य गुणों को धारण कर सकते हैं। क्योंकि हमारी भारत भूमि ये देव भूमि है और हम सभी के पूर्वज जो है वो देवी देवताएं हैं, इसीलिए आज भी मंदिरों में जाके भारतवासी गायन करते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। तो अगर हमारे मात पिता देवी देवताएं हैं तो हम भी उसी धर्म के हैं, उसी घराने के हैं, हम भी वैसे दिव्य थे, वापस हम ऐसे बन सकते हैं। और हमेशा गायन ही किया जाता है, मनुष्य ऐसी करनी करे मन वो नर का नारायण बन जावे। तो श्रेष्ठ कर्मों से हम नर के नारायण बन सकते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं। तो ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जहाँ पर ऐसा ऊंचा लक्ष्य बताया जाता है कि आप अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाइए, अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ आप बना सकते हैं जो आपका जीवन देख करके और भी अपने जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना के खुद भी सुखी हो सकते हैं, अन्य आत्माओं को भी सुखी कर सकते हैं और भविष्य जो है उसको भी हम ऊंचा बना सकते हैं। क्योंकि हम सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जो भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है वो कर्मों के ऊपर आधारित है। ये सृष्टि जो है ये कर्म क्षेत्र है, इस कर्म क्षेत्र अर्थात इस कर्मों की खेती में हम जैसे कर्म करते हैं वैसा ही हमको उसका फल खाना पड़ता है। तो श्रेष्ठ कर्मों का बीज कैसा बोया जावे इसकी समझ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दी जाती है, जिससे ही हम श्रेष्ठ कर्म करके और श्रेष्ठता को प्राप्त करते हैं। हमेशा कहा जाता है, अभी अभी हम पहले भी सुन रहे थे कि मनुष्य का जीवन जो है वो कौड़ी से हीरे जैसा बन सकता है। हीरा ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको मालूम है हीरा हमेशा मजबूत रहता है। तो उसी प्रकार कोई भी परिस्थिति आवे तो उसका सामना करने के लिए हमारे अंदर वो शक्ति आ जाती है ईश्वरी याद के द्वारा, जो हम अपने स्थिति को एक रस और श्रेष्ठ बना के रख सकते हैं। नहीं तो सारा समय भगवान के आगे जाके मंदिरों में जाके मनुष्य कंप्लेन करता रहता है कि मेरी ये मुसीबतें हैं, मेरे आगे ये प्रॉब्लम है, परंतु जब खुद को और खुदा को जान लेता है तभी उसको समझ में आता है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स है ये हमारी भूलों के कारण, हमारे कर्मों के कारण है। अगर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना लेते हैं तो उन प्रॉब्लम को हम सहज रीति से हल करके हम औरों को भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर इस कर्म फिलॉसफी को अगर समझ लेंगे तो आपको भी मालूम पड़ेगा कि कैसा हम अपना जीवन हीरे जैसा बना के, आपको ये भी मालूम होगा हीरे को जब भी धूप में रखा जाता है तो गर्म नहीं होता, कांच को रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार हीरे जैसा जन्म ऐसा है, हीरे जैसा जीवन ऐसा है जिससे सदैव शीतलता प्रधान होती है। हमारा जीवन शीतल बन जाता है क्योंकि मनोविकारों को प्राप्त करने की हमारे को परमात्मा के द्वारा ऐसी शक्ति मिलती है जिस शक्ति के आधार पर हम मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करके शीतलता को प्राप्त करते हैं। और जब खुद के अंदर वो शीतलता आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, उसका फायदा हम औरों को भी दे सकते हैं, औरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं, समाज को सुधार सकते हैं। तो यहाँ का यही स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से आप विश्व परिवर्तन कीजिए। नहीं तो हमेशा हम दूसरों की तरफ अंगुली करते हैं, किस व्यक्ति के कारण ये प्रॉब्लम हुआ, इसने ऐसा किया इसीलिए ये प्रॉब्लम हुआ। परंतु जब ये मालूम पड़ जाता है कि औरों के कारण प्रॉब्लम नहीं, मेरा ही मेरे कारण प्रॉब्लम होता है, उसको हम हल करके और अपने को ऊंचा बना लेते हैं तो वो बात हमें बहुत छोटी लगती है। कोई बड़ी भी बात आती है तो ऐसी छोटी फील होती है जिसका हम सहज सामना कर सकते हैं। परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहा जाता है, उसके याद के द्वारा हमें सर्वशक्तियां प्राप्त होती है, जिन शक्तियों से ही हम हरेक परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं, परिस्थिति में डगमग नहीं होते हैं, परंतु अपनी स्थिति को एक रस बना करके ऊंचा और श्रेष्ठ जीवन जी सकते हैं। तो आप भी जरूर आके इसका लाभ लेते रहेंगे क्योंकि आपके द्वारा ही इसकी ओपनिंग हो रही है। तो जिस स्थान की ओपनिंग आप लोग कर रहे हैं वहां पर आके जरूर इसका लाभ लेंगे, औरों को भी इसका लाभ देंगे। यही हमारी आप सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संतोष दीदी जी, आपने हमें सुंदर अपने ईश्वरीय जीवन के अनुभवों के द्वारा, श्रेष्ठ ज्ञान के द्वारा हम श्रेष्ठ कर्म करके कैसे जीवन को हीरे समान बना सकते हैं, इस संसार में कैसे अपने आप को हीरे समान चमका सकते हैं, इसकी प्रेरणाएं आपने हमें दी, इसलिए पुनः आपका धन्यवाद। कहा जाता है फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। मगर आज इस मंच पर एक हस्ती ऐसी है जिनके चेहरे पर हमेशा रूहानी मुस्कान रहती है। ऐसे हमारे मध्य उपस्थित विराजमान आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी जी बीच में है। आदरणीय जयंती दीदी जी, आप पिछले वर्षों 50 वर्षों से भी अधिक अथक रूप से समाज में सकारात्मकता, मानवीय तथा आध्यात्मिक मूल्यों को सजाने की सेवा कर रहे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के यूरोप डायरेक्टर हैं तथा आपकी एलिगेंट वॉइस एंड प्रोफाउंड इनसाइट से समाज के अंदर कई समस्याओं का समाधान करने में भी मदद प्राप्त हुई है। ऐसी सुंदर जिसको हमारे जिनको हमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जिनको परमात्मा ने फ्लाइंग एंजल के नाम से भी संवारा है, ऐसी दीदी जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आज स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस विथ गाइडेड मेडिटेशन के ऊपर हमें मार्गदर्शन करें। आदरणीय जयंती दीदी जी, सभा में जो भी उपस्थित बीके भाई बहने हैं, कृपया आपसे पुनः एक बार अनुरोध है कि गैलरी में आप सबके लिए जगह बनी हुई है, आप वहां पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करें।
ओम शांति। पहले तो मैं पुनर्वासियों को बधाइयां देने चाहती हूं। इतना सुंदर हॉल बन गया है जगदम्बा माँ की याद में, परंतु विशेष आध्यात्मिक सेवा अर्थ ये स्थान बना हुआ है और मुझे लगता है कि अभी से ही इस स्थान के बहुत ही सुंदर वाइब्रेशंस आपको पहुंच रहे होंगे। ऐसे है ठीक बात जी? जब मैं जगदम्बा माता जी को याद करती हूँ तो मुझे उसका हर्षित चेहरा सदा याद रहता। मैं बहुत छोटी थी जब पहले मुलाकात रही, फिर और आगे भी मुलाकात होती रही, और कोई भी हालत में कोई भी परिस्थिति में मम्मा सदा ही हर्षित रही। परंतु वो एक आंतरिक मम्मा के अंदर एक बहुत ईश्वरीय आनंद अथवा ईश्वरीय खुशी का अनुभव था, जो सदा जो भी उनसे मिलते थे सबके साथ वो खुशी का ही लेन देन करती रहती थी अथवा आनंद का ही वो व्यवहार करती रही। तो आज इसी लक्ष्य से हम भी ऐसे कैसे बने, स्पिरिट ऑफ हैप्पीनेस किस प्रकार से हम अपने जीवन में भी धारण कर सके, उसके लिए कुछ कुछ बातें जो ईश्वरीय ज्ञान से समझी है, अनुभव की है, वो आप सबके सामने रखते हैं। पहले तो मैं आपको एक रिसर्च की बात सुनानी चाहेंगी, क्योंकि मैंने देखा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा तो बहुत ही प्रकाश प्राप्त होता, परंतु साथ ही साथ आजकल विश्व के अंदर इतनी अच्छी अच्छी बातें रिसर्च हो रही है जिसका हमें भी उसका बहुत कुछ प्राप्ति हो सकती। तो ये एक प्रोफेसर थे इंग्लैंड के, आज भी वो हाजिर है, तो उनको अमेरिका के गवर्नमेंट ने निमंत्रण दिया कि वो आकर के हैप्पीनेस पर अपना रिसर्च करे। तो उसको अनलिमिटेड फंडिंग भी मिली, खूब सारे लोगों को उसने अपने साथ जोड़ा और रिसर्च करते रहे और लोगों से यही प्रश्न पूछते रहे कि आपको यदि खुशी चाहिए आप क्या समझते हैं, खुशी किस बात से आपको प्राप्त हो सकती। तो सब जो बहुत लोगों से उन्होंने ये प्रश्न पूछा, उसमें से दो मुख्य बातें निकली जिसके लिए लोग वर्णन करते थे कि यदि ये वस्तु हमारे पास होती हमें बहुत खुशी प्राप्त होती। एक तो उन्होंने कहा धन, हमारे पास धन होता तो हम बहुत खुश नसीब अपने को मानते, हम बहुत खुश रहते। और दूसरा लोगों ने बताया खूबसूरत, सुंदरता, यदि हमें खूबसूरती होती सुंदरता होती तो हमें बहुत बहुत खुशी प्राप्त होती। तो उन लोगों को ये आया कि आगे हम और इसका रिसर्च करें, तो वो गए वॉशिंगटन में। तो वॉशिंगटन में ऐसी जगह है जहां पर विश्व के बहुत ही सारे मल्टी बिलियनर्स, कहें मिलियनर्स तो छोड़ो, अभी बिलियनर्स की बात आ गई है, वहां पर पहुंचे तो जो मुख्य मुख्य उस लिस्ट के लोग थे उनसे उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपको इतना धन है जो गिनती से भी बाहर है, क्या आपको इस धन से खुशी प्राप्त हो रही है? तो उनका उत्तर मैं आपको बताने जा रही हूँ, रियल स्टोरी रिसर्च की। तो उन्होंने उनको बताया कि भाई साहब हम आपको क्या बताएं, जितना जितना हमारा धन बढ़ता गया है उतना उतना हमारी चिंता भी बढ़ती गई है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता, हमें कोई किडनैप न करे, हमारे परिवार वालों को कोई किडनैप न करे, क्योंकि सबकी नजर में आ जाती है धन की बात। ये भी बात आती है, हम सोचते हैं कि बेशक कितना भी हो परंतु वो कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ता ही जाना चाहिए। तो हम ये भी दिन रात यही मंथन करते रहते हैं, अभी और हम आगे क्या करें जो इसका और बढ़ता जाए। और फिर तीसरी बात ये भी हम सोचते हैं कि जो हमारे मित्र है, जो हमारे दोस्त है, उनकी मित्रता का भावना क्या है। हमारे मन में उनके प्रति शक की बात आ गई है कि पता नहीं उनको हमारे से धन लेना है, शायद इस कारण से वो हमारे साथ संबंध रख रहे हैं। तो हमको ऐसे लगता है कि जो भी व्यक्ति हमारे साथ अच्छा बोलता है, अच्छा चलता है, शायद उनको मेरे से कुछ चाहिए। तो फिर हम थोड़ा घबरा जाते हैं, थोड़ा सबसे संकोच करके थोड़ा दूर रहते हैं। तो ये सब बातें सुन करके आखिर उन्होंने कहा, हाँ लगता है कि आपको तो कोई खुशी तो धन ने दिया ही नहीं है। तो इसको बात को मानते थे कि धन से तो कोई हमें सुख नहीं मिला है और ये हमारा फिक्रात बढ़ता गया है। फिर नेक्स्ट वो गए, कहाँ गए होंगे, वो गए हॉलीवुड, जहां खूबसूरत भाई बहने उनको खूब सारे मिले। उनसे बातचीत की, उनके रिसर्च के हिसाब से उनको क्या पता चला, प्रश्न वही था कि आप समझते हैं कि आपकी खूबसूरती से आपको बहुत कुछ खुशी प्राप्त हुई है। तो कहे बिल्कुल ही नहीं। उनके पास भी सारी लिस्ट थी चिंता की। उनका क्या था कि आज तो हम बहुत ही प्रसिद्ध हैं, परंतु ये भी हम जानते हैं हमारी आयु धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हमारी खूबसूरती कहाँ तक चलेंगी ये भी हमको एक बहुत फिक्र है। ये हम देखते हैं कि नौजवान लोग स्टेज पर आते जा रहे हैं और उनका बहुत नाम बाला होता जा रहा है, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारा नाम कब तक बाला रहेगा, 5 साल 3 साल 10 साल, कोई हमें बता नहीं सकता। तो उसका भी हमें बहुत फिक्रात होती है। हम हर रोज आईने में देखते हैं कि चेहरे में और कोई लाइन्स तो नहीं आ गई है। हम जब भोजन पान करने बैठते हैं, एक एक चम्मच का हिसाब हम रखते हैं कि हमारा वेट जास्ती न बढ़ जाए, तो हम ना आराम से खा सकते न आराम से किससे मिल सकते, क्योंकि वो भी हम समझते हैं कि आज तो हम प्रसिद्ध है इस कारण से तो नहीं लोग हमारे पीछे पड़े हैं। तो सच्ची फ्रेंडशिप क्या है हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता है कि किस भावना से लोग हमारे दर पर आते हैं। तो उनका खाना पीना सब कुछ हराम, तो उनके अंदर भी कोई खुशी का अनुभव नहीं। तो भिन्न भिन्न इस प्रकार से रिसर्च करते करते आखिर उनको एक बात पर आकर पहुंचे कि हाँ, एजुकेशन ही सबसे बड़ा खजाना है और एजुकेशन के द्वारा ही हर एक अपने जीवन के अंदर एक जैसे कि उसको पिलर बना करके रखता और उस द्वारा ही अपने जीवन को अच्छा बना सकता, तो उस द्वारा ही उनको खुशी प्राप्त होती। और साथ साथ दूसरी बात उनको ध्यान पर आई कि जिन्होंने अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखा है, अपने जीवन के अंदर मूल्यों पर ध्यान रखा है, जिससे अपने कैरेक्टर को ऊंचा बना के रखा है, उस द्वारा उनको खुशी प्राप्त होती। तो आध्यात्मिकता के हिसाब से तो हम आपको बता सकते थे कि धन से कोई सदा की खुशी नहीं प्राप्त होती, परंतु रिसर्च भी आजकल यही बात बता रहा। साथ साथ खूबसूरती तो आज है कल नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं, कब तक चल सकती, तो क्या उससे हमारी खुशी प्राप्त होंगी, ये भी तो का बात नहीं है। परंतु हाँ, हम कहेंगे कि बाहर की एजुकेशन कितनी भी आजकल हो, परंतु स्पिरिचुअल एजुकेशन के हिसाब से जो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता, जो हमें पता चलता कि हमें सचमुच अपने जीवन को कितना हम आनंदमय बनाकर रख सकते, उससे सचमुच हमारे जीवन में एक ऐसा खजाना मिलता जो जितना भी औरों को बांटते जाओ हमारा खजाना वो बढ़ता जाता। वो कभी खूटने वाला नहीं है, कोई चोर उसको लूट नहीं सकता, कहां वो हम खो नहीं जाते हैं। बैंक के नीचे ऊपर होती रहे परंतु वो हमारी खुशी गायब नहीं हो सकती। तो ये एक तो हम अपने जीवन को इतना स्पिरिचुअल एजुकेशन के हिसाब से इतना ऊंचा बना करके रखें जिससे सदा जो भी प्रॉब्लम्स हो संसार की, प्रॉब्लम्स है बाहर, और जैसे बड़ा सुंदर गीत सुना कि समस्या कोई भी आए आप कठिनाइयों को कहो कि समस्याओं से बड़े तो भगवान का जो हमारा साथ है, खुदा हमारे साथ है, समस्याओं से बड़ा तो खुदा ही है। परंतु आध्यात्मिक शिक्षा के प्राप्ति के लिए जितना जितना फिर हम अपने मन को स्वच्छ बनाकर रखते हैं, जितना हम आध्यात्मिक स्टडी करते जाते हैं, उतनी हमें बहुत खुशी प्राप्त होती। और साथ साथ जब हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, हमें एक बहुत सुंदर बात की पहचान होती कि जो हमारी वैल्यूज है वो हमें पुरुषार्थ करके धारण नहीं करनी होती, क्योंकि वो हमारे अंदर ही है। वो आत्मा का इंट्रिंसिक ट्रेजर है। हम सबके अंदर शांति, प्रेम, सत्यता, पवित्रता और आनंद, आत्मा के ये इंग्रेडिएंट्स है जिस वस्तु से आत्मा बनी हुई है। तो जब हम अपने खुद को जानते हैं, बड़े सुंदर गीत सुने, अपने मन के आईने को साफ करो तो खुद को देख सकेंगे। तो जब हम खुद को देखते हैं तो पता चलता कि हमें बाहर शांति को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, खुशी के लिए हमें कहां कहां भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। आप कहो हम लंदन जाएंगे, स्विट्जरलैंड जाएंगे, वहां हमें बहुत खुशी प्राप्त होंगी। मैं तो समझती आपका जेब कट जाएगा परंतु खुशी तो नहीं मिलेंगी। तो जब हमें पता चलता कि अंदर की यात्रा से हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता, तो क्यों ना हम बहुत सिंपल ये बात का हम जीवन में अपनाएं और खुद को देखते चले और आगे बढ़ते चले। कुछ कुछ बहुत सिंपल बातें हैं जिससे हमें अपनी खुशी को सदा अपने साथ रखें, और कोई भी हमारे पास आए वो गम की कहानी न सुने, और ही कोई भी व्यक्ति रोता हुआ आए वो खुशी लेकर के जाए। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। जब ब्रह्मा बाबा जो अपना फाउंडर थे, उनके पास कोई भी आते थे, जगत अम्मा मातेश्वरी के पास कोई भी आते थे, आजकल मैं दादी दादियों को भी देखती हूँ, दादी जानकी है, कोई भी उनके पास आते हैं, आंखें भरी हुई होंगी, मन भारी होगा, परंतु जैसे वो अपनी कहानी सुनाते हैं बाबा द्वारा, मम्मा द्वारा चाहे दादियों द्वारा, उनको ऐसे उसका एक अनोखा सोल्यूशन मिल जाता, एक ऐसे अपनी शक्ति महसूस होने लगती है जो वो उनके बिल्कुल हर्षित चेहरे बन करके वो ऐसे चेहरे लेके जाते हैं। और इन महान अनुभव व्यक्तियों की तो बात छोड़ो, परंतु ये भी मैंने देखा है जहां जहां अपना सेवा केंद्र है, सेवा का स्थान योग केंद्र बना हुआ है, वहां पर भी लोगों का चेहरा मैं देखती हूँ किस चेहरे से आते हैं और फिर किस प्रकार के चेहरे से जाते हैं। तो वो एक घंटे दो घंटे के अंदर जो भी बातें सुनते हैं उनके मन के अंदर एक बिल्कुल ही नई प्रकार की भावना प्रकट हो जाती और वो उस भावना को लेके जाती। तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि पहले तो जबकि हम अपने जीवन की उन्नति करनी चाहते हैं तो हम सदा हरेक के गुण देखते रहें। हम एक यहाँ पर शब्द कहते हैं गुण चोड़, सबके गुणों को देखते चलो, गुणों को धारण करते चलो, गुणों को चोरी करते चलो, दादी जी हमारे पास पहुंच गए हैं।
कर रहे थे ऐसी हम सबकी प्यारी राजदुलारी प्राण प्यारी आदरणीय राजयोगिनी दादी गांधी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए। आपकी खुशबू है जब पहली उत्तंग और सर्वत हो जहाँ यही दुआएं दादी जी आपकी आयु सतशत हो सबके जान जिसकी धड़कन दादी जानकी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं और हम सभी कर्तव्य से दादी जी का स्वागत करेंगे। तराशा प्यार से जिसे रब ने वो मूरत हो तुम तराशा प्यार से जिसे रब ने वो मूरत हो तुम संतराशों की जैसे देवी तुम सा जहां में कोई ना दादी तुम सा जहां में कोई ना। सचमुच आपके आगमन से आज ये मंच उपकृत हुआ है। फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं जहां जाते हैं चार चांद लग जाते हैं उस मंच की शोभा क्या कहने जहां दादी जी पधारते हैं हम सभी दादी जी का जोरदार कर्तव्य ध्वनि के द्वारा स्वागत करते हैं। हमारा कितना ना सौभाग्य है क्या आज हम अपने नैनों के द्वारा दादी जी का दर्शन कर रहे हैं, हमारा कितना ना सौभाग्य कहे, क्या कहे अपने सौभाग्य के जो आज हम दादी जी को देख रहे हैं। अभी मैं जयंती दीदी से अनुरोध करूंगी कि आप कंटिन्यू करें।
ओम शांति। मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने सुनाया उसी सार से ही मैं अभी यहीं समाप्त करूं, ताकि और आगे कार्यक्रम रहे। दादी जी भी अभी साथ आ गई हैं, तो आप दादी जी से सचमुच वो खुशी का खजाना लेते जाना। सिर्फ मैं एक शब्द में कहेंगी कि दादी दो दिन पहले दिल्ली में थी, फिर पुणे में आई, और पूना से फिर कल दोपहर को अपनी एक और बड़ी दादी जी बॉम्बे में है, जिनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, तो दादी दोपहर को प्रोग्राम के बाद 4 बजे दोपहर को गई बॉम्बे, रात्रि को 1 बजे सवेरे आज आकर के पहुंची, और दादी की उम्र है 102।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयंती दीदी जी। अभी मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि दादी जी का तिलक पुष्पगुच्छ और बैच के द्वारा स्वागत करें। और मैं साथ ही में हंसा बहन जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर आएंगे। दादी जी से आशीर्वचन सुनने के लिए आए हैं। आशीर्वचन सुनने से पहले हम सभी को यहाँ आज 4 मिनट का एक वीडियो भी दिखाया जाएगा।
Giants, you know, that have come to the full expression of what a human being can be.
She's smart. She is a little bit irreverent. She is the one who will tell you what's true about you.
Giants, you know, that have come to the full expression of what a human being can be.
She's smart. She is a little bit irreverent. She is the one who will tell you what's true about you.
And she started talking to me about conscience and how our conscience has become clouded with so many influences. And I said, well, how does one clean the conscience? And she said, through meditation. And I thought, I have to learn meditation.
Mm-hmm.
आया नहीं है पर उसकी उम्र दे निमित्त हमारे थ्रू पूरी कर रहा है.
And so I always feel as if I am not doing anything, but it's the hopes of the Supreme, the feelings of the Supreme that are being translated through me, that are working through me and benefiting others.
ये कर रहा है.
It's my heart, it's my mind, and it's the eyes that are enabling things to be done.
शांति से करता है.
And that we have to use the power of peace in everything we do. And Parijanki, at the age of 92, then took on the mantle of leadership of the whole organization. And so she started a new job, age 92 at that time. At age 95 today, she still travels over the world. Age is not a factor, the spirit is eternal and very strong. Tell you that it's because I haven't wasted my thoughts and my energy, that's why I have a lot of strength today.
Positive, pure, apne andar shanti ki shakti badhta hai.
Pure and positive thoughts help me to accumulate strength
inside. खुद को भी ताकत मिलती है और ताकत मिलती है.
And through these good wishes, the self receives strength and others also receive strength from me.
जिनका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिनको अभी हम सभी, जिनके आगमन से हम सभी धन्य धन्य हुए, ऐसी दादी जी हमारे बीच में उपस्थित है. और अभी मैं मंच पर उपस्थित सभी महानुभवों से अनुरोध करूंगे कि दीप प्रज्वलित करके आज के इस हॉल का विशेष उद्घाटन करें. आज जैसे कि आप सभी को बताया गया कि आप सभी के उपस्थिति के द्वारा ही आज ये हॉल का उद्घाटन होने जा रहा है, तो मैं मंच पर उपस्थित अनुभवों से अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलित करके हॉल का उद्घाटन करेंगे. अनुग्रहित है हम आयोजक जन मन तन उल्लासित हुआ. श्रीमान जी आप पधारे, उपकृत ये मंच आज हुआ, उपकृत ये मंच आज हुआ. हाँ. साथ ही मैं कैंडल लाइटिंग के लिए कुछ मेहमानों को अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आकर के कैंडल लाइटिंग करेंगे। जी मालकर अर्थ क्रांति के अनिल दोस्त के आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आकर एक सज्जन करें। साथ ही मैं उन्हीं लागतियों से भी अनुरोध करूंगी कि आप भी मंच पर आकर एक सज्जन करें। हम तो खुद भी बने झुलबिल मेरे चरणों में जलते हैं। हम तो खुद भी बने झुलबिल मेरे चरणों में जलते हैं। तेरे रहमत के दूर सारे वर्ष खुलते हैं। अंधकार से डरना है, आओ सूरज जाते हैं। कुमार गोयल जी से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर कैंडल अंबर के कम सारे दर्शक चल जाते हैं। बंद जो इसी है वह स्टेज के पास किया जाए। बाबा साहेब पुरंदरे जी दादी जी का स्वागत करेंगे। शिव शाहीर बाबा साहेब पुरंदरे जी और दादी जी भी बाबा साहेब पुरंदरे जी का स्वागत और शॉल उठाकर सम्मानित करेंगे। Thank you. हमारी ये स्मृति में रहेगा कि विद्यानगरी में जगदम्बा भवन के उद्घाटन पर हम सभी उपस्थित हुए थे और दादी जी के द्वारा हम सभी ने आशीर्वचन सुने। अभी हमारे मध्य उपस्थित विभागीय कमिश्नर डॉक्टर चंद्रकांत रवि जी, आप उत्कृष्ट महाराष्ट्र शासन उत्कृष्ट जिलाधिकारी से उपस्थित हैं, साथ ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपको जलदूत पुरस्कार प्रदान किया गया, महाराष्ट्र शासन के द्वारा स्वच्छता पुरस्कार, साथ ही में भारत सरकार के द्वारा आयोजित निर्मल ग्राम योजना और साथ साथ में संत गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान के आप जन्मदाता हैं। ऐसे महान विभूति से हम अपने उनके दिल के उद्गार से उनके अनुभव सुनेंगे। डॉक्टर चंद्रकांत रवि जी,
व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय जानकी दीदीजी, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्र भूषण शिवशाहीर सन्माननीय बाबासाहेब पुरंदरेजी, त्याचप्रमाणे व्यासपीठावर उपस्थित सर्व दीदीजी ज्यांच्या अथक प्रयत्नातून हे जगदंबा भवन उभं राहिलेलं आहे, ते श्री बालन भाईजी, व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, त्याचप्रमाणे सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व माता बंधू आणि दीदीजीज, आपणा सर्वांचं एक भाग्य आहे की पुण्यासारख्या या आपल्या देशातील महत्त्वाच्या शहरामध्ये जगदंबा भवन या ठिकाणी उभं राहिलं आहे। हे प्रति माउंट आबू म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही अशा प्रकारची परिस्थिती आहे। पुण्याची अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, सांगावी तेवढी थोडीच आहेत, पण आता त्या जगदंबा भवन ही एक नवी ओळख ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्माकुमारीज यांचं मला असं वाटतं की हे देशातलं दुसरं स्थान राहील, इतकं महत्व या जगदंबा भवनचं राहणार आहे। मी गेले काही वर्षापासून या ईश्वरीय विश्वविद्यालयाशी जोडला गेलेलो आहे आणि अनेक अनुभूती आपणा सर्वांच्या सारख्याच मलाही आलेल्या आहेत। जगदंबा भवनच्या उद्घाटनाच्या समारोहामध्ये आपण आहोत म्हणून मला काही आठवणी जरूर इथे सांगितल्या पाहिजेत। सन 2011 मध्ये पहिल्यांदा मला माहित झालं की ज्याला दशरथ भाई आणखी पुण्यातील बरेच सगळे मंडळी ज्याला सतत भेटत राहायचो की इथे पुण्यामध्ये एक सेंटर उभं करायचं आहे अशी जानकी दीदींची खूप वर्षापासूनची इच्छा आहे। कारण मेरा सेंटरच्या प्रमुख जानकी दीदी होत्या तेव्हापासून पुण्याबद्दलचं त्यांचं प्रेम सर्वांना जगजाहीर आहे, त्यामुळं त्यांची इच्छा होती आणि पुण्यातल्या सर्व प्रमुख भाई बहिणींची इच्छा होती की इथे एक भव्य वास्तू व्हायला पाहिजे आणि 2011 पासून अनेक जमिनी शोधण्यात आल्या पुण्यामध्ये, त्या सगळ्यांचा मी साक्षीदार आहे. अनेक प्रपोजल्स घेऊन यायचे दशरथ भाईंच्या बरोबर सगळेजण पुण्यातले मंडळी, आणि मी अनेक जण डॉक्टर्स असतात विविध विषयाचे, आम्ही कागदांचे डॉक्टर आहोत. त्यामुळे सातबाराला हात लावल्याबरोबर दंगरसाहेब आपल्याला कळते की ह्याच्यामध्ये काय आहे ते. त्यामुळे अनेक प्रस्ताव मी सांगायचो की याला हात पण लावला का. परंतु हा प्रस्ताव जेव्हा आला आणखी त्याचे सगळे कागदपत्र पाहिल्यानंतर या जागेची जेव्हा निवड झाली, काही फार जुनी गोष्ट नाही मित्र हो, म्हणजे हार्डली 1.5 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे की या जमिनीचा सातबारा जेव्हा मला पहिल्यांदा दाखवला तेव्हा सांगितलं की हे पुढे जायला हरकत नाही. आणि मी अशी संमती दिली की ही जागा योग्य आहे यासाठी म्हणून. आणि त्याच्यानंतर केवळ 4 महिन्यांमध्ये गोयल साहेब की या भूमीच्या भूमिपूजनाची पत्रिकाच घेऊन हे पुणेकर सगळी मंडळी भाई मंडळी तिथे मला भेटण्यासाठी आले होते. आणि मला आश्चर्य वाटलं की आता इथे बरेच डेव्हलपर मंडळी बसलेले आहेत. बालनभाई सुद्धा एक मोठे डेव्हलपरच आहेत पुण्यातले. पण आतापर्यंत कुणाचाही प्लॅन, म्हणजे आम्ही झेरो पेंडन्सीमध्ये फार वेगानं काम करतो तरी सुद्धा इतक्या लवकर कुणाचेही प्लॅन सँक्शन झाले नाहीत तेवढे ह्या जगदंबा भवनचे प्लॅन सँक्शन झालेले. हा सगळा चमत्कार आहे. या चमत्काराच्या पेक्षा दुसरं काही नाव असू शकत नाही. पण याच्यापेक्षा खरा समोर चमत्कारच व्हायचं त्याच्या पुढचा आहे की एवढी मोठी वास्तू बांधण्यासाठी नॉर्मली 2 ते 3 वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. आपल्या सर्वांना कल्पना, या क्षेत्रातले बरेच अनुभवी आपण या ठिकाणी आहात, पण बांधकामाला सुरुवात केल्यानंतर केवळ 12 महिन्यांमध्ये ह्या वास्तूचं उद्घाटन होत आहे. 12 महिन्यांमध्ये उद्घाटन होत आहे. आणि या सगळ्याचं श्रेय जे आहे ते बालनभाई त्या ठिकाणी बसलेले आहेत त्यांचं आहे. जेव्हा हे काम त्यांच्यावर सोपवलं गेलं जानकी दिदींनी, तेव्हापासून ते आज उद्घाटन होऊपर्यंत 12 तास मागचे वर्षभर ते इथं थांबले नाहीत असा दिवस नाहीये. आणि मी विथ फॅमिली मिसेस पद्मा दळवी पण बरोबर आहेत, आम्ही सर्वजण या कामाची पाहणी करण्यासाठी एक्झॅक्टली 2.5 महिन्यापूर्वी इथे आलो होतो. बाबासाहेब 2.5 महिन्यापूर्वी आलो होतो. आणि 2.5 महिन्यापूर्वी ज्याला इथे आलो होतो तेव्हा त्या परिस्थितीमध्ये किमान, म्हणजे माझा जे काही अनुभव त्याच्या आधारावर, आणखी 8 महिने तरी हे काम फिनिश होऊन उद्घाटन इथं होऊ शकतो असं मला अजिबात वाटलेलं नव्हतं. पण बालूजी म्हणाले की दिदीने ऑलरेडी तारीख डिक्लेअर केलेली आहे, 6 महिन्यापूर्वी बांधकामाचं स्टेज काय माहिती नाही. पण ही जी 28 जानेवारी जी तारीख आहे उद्घाटनाची, ती 6 महिन्यापूर्वी ठरली होती. आणि 3 महिन्यापूर्वी बालनजी ज्या स्टेजमध्ये होते मला असं वाटलं की उद्घाटनाच्या तारखा बऱ्याच ठरतात आणि बऱ्याच आपण पोस्टपोन करत असतो. आमचा नेहमीचा अनुभव आहे की तारीख ठरवून त्या दिवशी उद्घाटन झालं असं झालं तर फार काहीतरी वैशिष्ट्यपूर्ण झालं असं म्हणावं लागतं. पण पुन्हा 1 महिन्याभरापूर्वी जेव्हा पत्रिकाच हातात पडली की उद्घाटनाचा कार्यक्रम आहे आणि जानकी दिदी इथे येणार आहेत, तर असे अनेक चमत्कार वैयक्तिक जीवनातले चमत्कार कशाला सांगितले पाहिजेत. हे जगदंबा भवनची निर्मिती हाच एक चमत्कार आहे. आणि केवळ दादी जानकीजी यांच्यासारख्या केवळ विभूतीच पाठीमागं असल्याशिवाय हे शक्य नाही. आणि म्हणून मनापासून धन्यवाद देतो की बालनभाई आणखी इथं काम करणारे या वास्तूच्या उभारणीमध्ये जितक्या लोकांचा संबंध आलेला आहे त्या प्रत्येकाशी माझा वैयक्तिक संबंध आलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे मला माहिती आहे की पुण्यातल्या ह्या सगळ्या भाई बहिणजींनी, मेरा सेंटरनी किंवा इथल्या परिसरातल्या सगळ्या सब सेंटर्सनी किती कष्ट घेतलेले आहेत हे मी फार जवळनं अनुभवलेलं आहे. आणि म्हणून मी सर्वांनाच या निमित्तानं मनापासून धन्यवाद देतो. व्यासपीठावर अशा 2 महनीय व्यक्ती आहेत की त्यांच्याबद्दल काय बोलणार आपण. मग असे सांगितले की जानकी दीदी जी इथे आलेले आहेत, त्यांचं वय 102 वर्ष आहे. 102 वर्ष आहे. आणि मी ज्यांच्या शेजार मगाशापासून बसलोय ते शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, यांचं वय 96 वर्ष आहे. 96 वर्ष. आपण दोघांनाही मनापासून मानाचा मुजरा, धन्यवाद आपल्याला, आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.
मुख्य अतिथि ऐसे कहां सबको ही उपलब्ध, मुदित हुई आज ये फिजा, बदल गया प्रलब्ध. संशय था क्या आएंगे, चर्चित व्यक्ति हैं आप. देख सरलता दंग है, देख सरलता दंग है, इसलिए विख्यात है आप, इसलिए विख्यात है आप. सच में आपकी वाणी के द्वारा सुन के सच में ऐसा लगता है कि माननीय कमिश्नर साहब सच में ऐसे सरल व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अनुभव यहाँ पर हम सबके समक्ष शेयर किए. इसलिए और बहुत सुंदर अनुभव आप सबने सुना कि कैसे ये सच में ईश्वरीय कार्य है जो किसी न किसी को, जैसे आदरणीय बालन भाई जी को इंस्ट्रूमेंट बनाकर ये सुंदर भवन को निर्मित करवाया. तो एक बार ईश्वर के लिए भी धन तालियां बजाइए. जो करण करावन हार वो है और हम सब करणहार है. इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा ये ईश्वर का कार्य पिछले 80 सालों से आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. तो पुनः मैं एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी चंद्रकांत देवी सर जी से. और इसके बाद एक अनाउंसमेंट है कि 4 फरवरी को इसी हॉल में एक प्रोग्राम होने वाला है, राजयोगा फॉर हेल्दी एंड हैप्पी रिलेशनशिप, जिसमें हम सबकी प्रिय आदरणीय शिवानी दीदी जी आएंगे और जो हम सबको संबोधित करेंगे. प्रोग्राम का समय है मॉर्निंग 6:30 AM टू 6 से 8 बजे तक. अर्थात आप सभी को इस कार्यक्रम पे हार्दिक वेलकम है. आप सभी अपना समय निकाल के अवश्य इसमें आना. इसके पश्चात हमारे मध्य उपस्थित है ब्रह्मा कुमार के मल्टीमीडिया के चीफ और साथ में मीडिया प्रभाग के चेयरमैन आदरणीय करुणा भाई जी. आपसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप भी अपने अनुभव हम सबके समक्ष शेयर करें. आदरणीय करुणा भाई जी.
ओम शांति. आज का दिन ऐसा लग रहा है तो हम सभी उद्घाटन समारोह में है, परंतु मैं देख रहा हूं सचमुच आज का उद्घाटन जो आप मेहमान बैठे हैं आपसे हो रही है. क्योंकि वैसे तो पुणे के लिए कहते ही है विद्याभूमि है, व्यासपीठ है, इसके बीच एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी का एक कार्य यहां से सर्व यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के किस तरह से कार्य करेंगे वो आप आगे देखेंगे, परंतु ऐसे महान पुण्य का कार्य का उद्घाटन आप सबसे आज हो रही है. मैं यही चाहूंगा तो पहला प्रोग्राम जो होने वाली है उसका भी उन्होंने बता दिया, मैंने देखा आप सबके मुखारविंद से लग रहा था कि भाई आप सब कितना खुश है. तो मैं यही चाहूंगा कि हम सबके जीवन में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो यादगार के, जो आज के दिन जो है हम सबका एक महान पुण्य का कार्य का, जैसे आप समझो सचमुच एक विद्या मंदिर का एक उद्घाटन हम सब मिलकर के कर रहे हैं. मैं भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बनकर के सन 1960 में माउंट आबू गया था, जहां स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने जैसे जो दादी जी को आज आप देख रहे हैं ऐसे 350 दादियां वहां उपस्थित थे उस समय पर, जो आज ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व में ये कार्य कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है एक दीवा से अनेक दीवाएं हैं, तो दीप जलाने का भी आप सबने शुरू किया है, तो वो सारे पूना में नहीं सारे महाराष्ट्र में अभी भी चल रही है और तीव्र गति से चलेगा। यूनिवर्सिटीज के द्वारा विद्यानगरी से तो वो भी हम सभी देखेंगे। तो आप कहेंगे हम सब कौन सा शिक्षा यहां प्राप्त करते हैं, हम सभी गीता का सार शरीर नहीं है, हम सभी आत्माएं हैं, चेतन दीवा है। दूसरी बात, अब तक हम यही सुनते आए हैं कि यह सब मिथ्या है, नहीं, हम सब बैठे हैं, मैं देख रहा हूं, आप सभी देख रहे हैं, हमारे दादी जी साथ है, तो क्या सत्य है? ईश्वर की रचना ये सृष्टि इसी भारत भूमि में सोने की चिड़िया कहा जाता था, सतयुग स्वर्ग फिर से स्थापन करने का ये कार्य आज हमारे दादी जी कर रहे हैं। तीसरा, हम सबके साथ कौन है, कौन सा ऐसा शिक्षक है जो हमारे भारत को विश्व गुरु के तरफ ले जा रहे हैं। सारे विश्व आज भारत के ओर देख रहे हैं। मुझे आज अत्यंत हर्ष है, जैसे हमारी पूना की धरणी, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो इसी प्रकार भारत में संस्कृति का व्यासपीठ है, तो यहां से ये आध्यात्मिक शिक्षा, एक ईश्वर एक विश्व परिवार वसुदेव कुटुंबकम, ये सत्य सारे विश्व तक यहां से पहुंचेगा, ऐसे आशा करते हुए आप सभी इसका सहयोग बने हैं, बनते रहेंगे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना वाणी का विराम करता हूं। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी। अभी हमारे मध्य उपस्थित हैं ब्रह्मा
दादी जानकी जी द्वारा जो अभी संपन्न हुआ उसमें उपस्थित हुए हैं, हम आप सभी का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब आपको बताया गया, कमिश्नर साहब ने बताया कि ये एक इस निर्माण में एक करिश्मा हुआ है बालन साहब और उनके टीम के द्वारा, मैं उनका साक्षी बना हूं और मुझे बहुत हर्ष और खुशी होती है कि इस जगदम्बा भवन के द्वारा, इस विद्यानगरी में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, इस जगदम्बा भवन के द्वारा विद्या के कई नए हम मेडिटेशन और उनकी प्रैक्टिसेस का भी यहां स्थापन करेंगे, जो सारे भारतवर्ष में शायद प्रथम यूनिट यहां आएगा, तो पुणेवासी इसका अवश्य लाभ लेंगे। और किस प्रकार से हम 90 डिग्री 180 डिग्री आदि आदि कई फोटो देखते हैं, किंतु 360 डिग्री के द्वारा हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल मेडिटेशन का अनुभव सूक्ष्म रूप में करेंगे, वो यहां आपको कुछ समय के बाद देखने मिलेगा, अनुभव करने मिलेगा। मेरी आप सभी को यही नम्र विनंती है कि आप यहां आकर इनका अवश्य लाभ लेते रहिए। ओम शांति।
दिव्य हुआ पांडाल या दिव्य हुआ है मंच,
कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आपके शिव चरित्र के ऊपर 1200 से भी अधिक व्याख्यान हुए हैं। आपके 250 लोगों का समूह जानता राजा नाट्य जो ग्रुप है, इसके आप लेखक, दिग्दर्शक तथा वक्ते हैं। तो ऐसी महान विभूति से हम अभी दो शब्द सुनेंगे, आदरणीय बाबा साहेब पुरंदरी जी।
पूजनीय माता जी, पूजनीय सिंधुताई, पूजनीय व्यासपीठ आणि बंधुभगिनी, आपली खात्रीच असणार की मी मराठीतच बोलणार। पण मी आज हिंदीत बोलणार आहे, फक्त आपण ते सहन करा। ये सब वैभव देखकर आप कितने खुश हो गए हैं, ये मैं और आप समझ सकते हो। और ये वैभव में ज्यादा बड़े हो गए तो माता जी के आगमन से। एक कवि ने कहा है, वही मैं कहता हूं और ठहरता हूं। फिजाए जान फिजाए जले दिन आए, हकीकत में मुल्के पुनः गुल जमीन आए। अगर मेरे वस्त जन्नत कहीं है तो बेशक यही है, यही है, यही है। मैं एक ही प्रार्थना माता सरस्वती सरस्वती को करता हूं, सामाम पातु सरस्वती भगवती, दूसरा कोई मेरा इच्छा नहीं है, लेकिन एक इच्छा है, इसमें बहुत समय है। श्रद्धाम मेधाम मेज प्रज्ञाम विद्या बुद्धिम श्रेयम बलम ऐश्वर्यम तेज आरोग्यम देही में जगदम्बिके, देही में जगदम्बिके।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुरंदरी साहिब जी से। बहुआयामी है आप, बहुआयामी है काज, पाकर अपने बीच में पुलकित है अमाज, पाकर अपने बीच में पुलकित है अमाज। आदरणीय हमारे बीच में आदरणीय बालन भाई जी उपस्थित हैं। आदरणीय बालन भाई जी, आप इस सुंदर विशाल जगदम्बा भवन के निर्माण के कार्य में इंस्ट्रूमेंट बने। आपको ऑटोमोबाइल बिजनेस, आईटी, हम सभी बालन भाई जी से सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हम सभी जिनसे सुनने के लिए उत्कृष्ट हैं, आतुर हैं, ऐसी हमारी प्राण प्यारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका डेल्टा वुमन, ऐसी हमारी जानकी दादी जी से हम सभी आशीर्वचन सुनेंगे। जोरदार तालियों के द्वारा हम सभी दादी जी का पुनः आज इस मंच पर जगदम्बा भवन में पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं और दादी जी से हम सभी आशीर्वचन सुनेंगे।
मैंने इन भाई को कहा, एक थोड़ा गीत बजावे, बहुत अच्छा है मेरा मधुबन का भाई। सब साइलेंस में बैठ,
ओम शांति, ओम शांति। सभी नहीं बोलते हैं, मैंने देखा जो भी यहाँ स्टेज पर बोलता है ना, सभी मुख से निकलता है ओम शांति, पूरा करेंगे ओम शांति। तो मैं शुरू में ही कहती हूँ ओम शांति, क्योंकि शांति है तो प्रेम है, सभी प्रेम के मोती टूक रहे हैं, अंडरफुल है। शांति शांति शांति, सब पहले शांति कहते थे या ओम कहते थे, अब ओम शांति, पहले बोलो ओम शांति, नहीं बोलते संतोष दीदी, सभी के मुख से नहीं करता है ओम शांति, अभी ओम शांति, यही बोल रही है। थैंक यू, क्योंकि ओम शांति सारे विश्व में अच्छा काम किया, और जयंती बहन ने उस काम को साथ दिया है, ताली बजाओ जयंती बहन के लिए भी। अभी इस जन्मी पुण्य में बड़ी पुण्य में हुई है, सेवा पर भी पुण्य से गई है, इसलिए कदाचित हो गई। मैंने कहा ये तुम भी विजय जयंती माना क्या है, विजयंती 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 विजय, मैंने देखा है आंखों से, दंडन में भी देखा, परिपूर्ण में देखा, इसके माँ बाप भी वंडरफुल से, दोनों ही स्वर्गवासी हो गए, यानी स्वर्ग में उनका सीट फिक्स हो गई, निमित्त बने, हांगकांग में भी निमित्त बने, और लंदन में भी हांगकांग में और दादा राम था वो निमित्त बना, और यहाँ इसका डैडी एवं मम्मी लंदन में निमित्त बने, लंदन से फिर पुणे में जयंती क्या प्रोग्राम बनाएंगे, ये जो इतना बड़ा हाल है ना, ऊपर भी भर जावे या नीचे भी भर जावे, ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो सब इसमें पांव रखे ना तो फिस्ता बन जावे, क्यों फिस्तों को मुझे बाबा की एक बात बहुत अच्छी लगी थी, जैसे भाई साहब ये तीनों बैठे है, पांव ऐसे करो, पांव ऐसे करो, ऐसे ऐसे। बाबा ने मेरे को कहा, बाबा ऊपर रिसेप्शन एरिया में वहां खड़ा था, नीचे हम बैठे थे, तो बाबा ने कहा पांव ऐसे करो, मैं समझा नहीं बाबा क्यों कहते है, क्या फिस्ता बनना है ना तुमको, तो पांव नीचे नहीं करना रखा, तो वो उधर मेरा पांव नीचे नहीं करते है, करने देते है पांव ऊपर, और मैं कहा आंखें गीत बजाने वाले को इशारा देती हूँ, थोड़ा अच्छा गीत बजा दो, परंतु ये भी पता नहीं प्रभु का प्यारा है ऐसा न्यारा है, जहाँ भी प्रोग्राम होता है वहाँ हर दूर हो जाता है, ताली बजा बजा। और ये वंदर वंदर है, वंदर वंदर है, वंदर है। आज यहाँ पूर्व जो फोटो ऊपर में मम्मा को देखा, पीछे आप जब उठो ना अच्छी तरह से ये देखना था, कल नहीं था, आज देखा। ये भी हमारे हमारे प्यारे जगदम्बा भवन के इतने जल्दी में सुने में कैसे हमारे बाबा का बच्चा बाबर बदन भाई बाबा का बच्चा ने कहाँ गए कहाँ बैठा है खड़ा हो जाओ अच्छा जब हम यहाँ से निकल रही थी तो दौड़ा दौड़ के मेरा भाई खड़ा था मैंने कहा सभी गए अभी भाई अभी यहाँ मेरे लिए खड़ा है अभी खड़ा नहीं रहेगा मेरे लिए समझेगा ये अभी सेवा के अर्थ जागृत पंडरपुर बाबा का जो कार्य शुरू से लेकर के लंदन में भी पहले तो तेरह पाउंड किराए पर फ्लैट था छोटा सा अभी ग्लोबल हाउस बन गया डायमंड हाउस बन गया सारे विश्व में ऐसा हाल फिर लंदन में तो बना ये हाल लंदन से अच्छा हो गया ये रीस फिर अमेरिका में भी बीच विलेज बन गया अभी इसका भवन का नाम क्या रखेंगे ये भवन का मामा का नाम क्या रखेंगे जगत अम्बा भवन जगत की माँ ये फोटो जो ऊपर में माँ नीचे जो भी सही छोड़ा जिन्होंने वंडरफुल है एक एक जानते हैं पहचानते हैं बाबा को जानना बाबा को पहचानना बाबा को उनसे जो मिलता है प्राप्ति है वो भी ऐसे भाग्यशाली सौभाग्यशाली पद्म पद्म भाग्यशाली बाबा के बच्चे यहाँ बैठे है मैं मतलब पास का है आज का दिन महान है बाबा हमारे साथ है बोलो न आज के भाई जो भी निमित्त बने हुए हैं बादम भाई उनको जान सड़क बिल या अब साथ में खड़ा हो जाओ अच्छा वंडरफुल मेरे भाई को भी तो नमो जी फूल दिया हुआ हमारे भवन में नहीं जहाँ जहाँ वंडरफुल सुनो यहाँ भाई कौन से युग में आपने ये पाठ बजाया था मैं जब कुछ भी पाठ में आती हूँ तो मैं कहती हूँ 84 जन्मों में ये पाठ मिला था 84 जन्मों में गुप्त सेवा सच्ची सेवा गुप्त सच्ची दिल से सेवा राजी भगवान राजी सच्ची दिल पर साहेब राजी हिम्मत बच्चे मदद बाप हिम्मत बच्चे मेरे को टाइम भी नहीं दिया है तो ये कैसे खेल जाया किसी ने खेल जाया अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया वही तालिबान ये अपने आप को छिपाया ये दीदी भी हमारी संतोष दीदी मंडल फूल दीदी है सभी भाई भी साथ दे गया सभी जिन्होंने मेरा कौन मैंने सुना है दस भाई के साथ सुनो तो मदद कर रहा है, उसको भी सभा को दर्शन कराओ। ये घड़िया रखो, घड़िया रखो। ओके ओ दसुगा, तू छोटा मेरा भाई, कितनी उम्र है?
67, जानकी 51।
क्या बोला?
51 और ज्ञान में 51। पचास साल हुए
जैसे 11 महीने इतना बाल में सफेद हो गए। ठीक है, दस नारायण गांव आगे का उन्होंने थे, नारायण गांव वाले मुझे खास नारायण गांव वाले सिखाना मिलाना समझा, नारायण गांव नारायण बनना है, माता को क्या बनना है, लक्ष्मी देवी शक्ति, लक्ष्मी देवी शक्ति, यहाँ मैं हूँ आत्मा, मेरा है परमात्मा, मेरा मतलब को मेरा कोई ऐसा चाहिए मोह, तो मोह जीत भी हो गए, मेरा भी कहे मेरा 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 बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा, तो आज भी सभा में यहाँ मुझे बिठाया, पांच जी ने मैं वैसे नहीं बजाती हूँ, अपने लिए जरूर बजाएंगे। मैं आपने क्या बोला, कुछ नहीं बोला मैंने। अच्छा थैंक यू। जगदम्बा मामा के नाम से क्या था, पहले पहले पहला भाई मैं बाबे से पूना आई, तो मैंने कहा मैं पूना में क्या करेगी, मैं बाबे में सीखू, मैं गाने पूना में तू रहना है, तो मम्मा मुझे आई थी, मम्मा का जो मामा था ना वो भी बहुत प्रभु का प्यारा था, इतना प्यारा से मम्मा को कहा मम्मा सोचा छोड़ दो पूना में छोड़ दो, ऐसा पूना में बिठाया जो आज कितना 50 साल हो गया, 50 साल भी होगा उनसे भी ज्यादा हुआ होगा, हाँ वंडरफुल 7 साल, इसकी मम्मी भी 7 साल पहले आई और 7 साल डैडी भी आने लगा, वंडरफुल है, तो भाई बहन ब्रह्मचर्य में रहते ब्रह्माचारी बन गए समझा, ब्रह्मचर्य में रहते ब्रह्माचारी बन गए, तो ब्रह्मा जल सिखाया मुख में खिलाया ब्रह्मा भोजन, और रुख से बोला ब्रह्मा श्री बाबा का ज्ञान, योग सेवा धरना दर्द ज्ञान योग धारणा धारणा ऐसी हो, कभी भी भूल से भी झूठ न बोले, सच्ची दिल पर साहब राजी, सब बोलो सच्ची दिल पर साहब राजी, जो भी कुछ भूल हो गई ने माफी दे दी और अच्छे कर्म करने के लिए शक्ति दे दी, हम न्यारे प्रभु के प्यारे बन गए। ठीक है सभी ऐसे संतो से ओम शांति, समझा अभी सब बोलो ओम शांति। ओम शांति। या बाबा या हम ड्रमानुसार सेवा साथी है, ओके थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। ये किस लिए है? दादी जी के 102 साल। ये तो जिंदगी का एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है। तो ऐसी हमारी प्राण प्यारी दादी जी के लिए हम ऐसी शुभावनाएं शुभकामना करते हैं। दादी जी आप जियो हजारों सात साल के दिन हो 50,000। तो तालियों के द्वारा ऐसी दादी जी के लिए हम अपने दिल के उद्गार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। अभी हमारे बीच में अनाथों के लिए सेवा कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता माननीय सिंधुताई सपकार जी का आगमन हमारे बीच में हुआ है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया आप भी मंच पर आए। माननीय सिंधुताई सपकार जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं। जामली भाई जी से अनुरोध है कि आप ताई जी को लेकर आए। आप भार्गव फिल्म एंड प्रोडक्शन अनाथों की यशोदा उसके नाम पर आपके नाम पर एक अनुभव पर फिल्म भी हुई है। सिंधुताई सपकार बोलते आपके जीवन पर ये एक फिल्म निकली हुई है। आदरणीय सिंधुताई जी का शॉल उतार कर सम्मान करते हैं और ईश्वर का प्रसाद सौगात दे रहे हैं। प्रदान करके उनका स्वागत सत्कार हुआ। आज ये मंच ऐसे सुंदर सुंदर और महान अतिथियों के महानुभवों के आगमन से सच में धन्य धन्य हुआ है। ऐसी महान विभूतियाँ जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन समाज कार्य हो चाहे वो विश्व के उत्थान का कार्य हो, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाकर मानवता की सेवा के लिए लगाया।
खर म्हणजे एवढ्या मोठ्या सोहळ्यामध्ये येणं आणि मुकमुक जाणं परवडे पण नाही मला। म्हणून मला आज प्रश्न पडला की किसे अपना बनाऊ कोई काबिल नाही मिलता, किसे अपना बनाऊ कोई काबिल नहीं मिलता, पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। आणि इथे सगळे दिलच दिल भेटले मला। शिवबाबाच्या सावले सगळे दिल होतात आणि दादीचा आशीर्वाद म्हटल्यानंतर क्या बात है, हमारे भी कॉलर आज टाइट है बाबा। म्हणून मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला, फिकीर करू नका काळजी करू नका जगायला शिका, हेच दादी मां सांगते, इथे या शुद्ध होऊन जा। म्हणून मेरे जनाजे के पीछे जनाजे यांनी प्रेत यात्रा, मेरे जनाजे के पीछे सारा जहां निकला मगर वो नहीं निकले जिनके लिए जनाजा निकला। कितीही तुम्ही संसार करा काय काय करा हित करा अनहित करा कोणासाठी जगा, पण कोणीही कुणाचं नसतं। तुम्हाला शांती हवी असेल, परमात्मा हवा असेल, मनाला खूप मोठ्या वेदना होत असतील त्या निवारण करायच्या असेल तर इथे यायचं आहे, इथून जायचं आहे आणि अमर व्हायचं आहे। नमस्कार, ओम शांती।
आपने
दादी जी बहुत ही प्यार से सिंधुताई का दुलार कर रहे हैं। इस अनमोल और नयन रम्य पलों को कहाँ संजोए रखे, इन अनमोल और नयन रम्य पलों को कहाँ संजोए रखे, न जाने कब ये दिन वापस कब आए। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में कहा जाता है, आज ये जो क्षण, आज ये दिवस हम देख रहे हैं, 5000 साल के बाद पुनः ऐसे ही हम देखेंगे और पुनः वापस ऐसे ही हम यहाँ पर मिलेंगे। तो हम सभी के लिए खुशखबरी है कि वापस हम सभी ऐसे ही इसी मंच पर, इसी हॉल में एकत्रित होंगे और इन सभी महानुभूतियों के द्वारा, दादी जी के द्वारा हम आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। तो ऐसे अपने आप के लिए, अपने सौभाग्य के लिए, भाग्य के लिए ताली तो बजाइए कि कितने ना हम सौभाग्यशाली हैं। तो अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगी बालन भाई जी से। बालन भाई जी,
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इस वक्त एक मेरे लिए एक आदेश मिला हुआ है, इस भवन के लिए जिस जिस मुख्य काम हर आदमी इन्होंने यहाँ किया, ऐसा नाम लेने के लिए जाएंगे तो करीबन 2500 आदमी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, कम से कम 2500 आदमी जुड़े हुए हैं। सबका तो नाम लिया नहीं जाता है, समय के मर्यादा रखते हुए दादी ने खास ये मैसेज मेरे को भेजा है और वो लिस्ट भी भेजा है दादी हमारे से लेके, उस हिसाब से मैं यहाँ कुछ लोग को अनुरोध करने वाला हूँ। ब्रह्मा कुमारी में सबसे पहला मान कन्या लोग का रहता है, माताओं बहनों कन्याओं का रहता है। उसी प्रकार इस काम कुछ मेरे को सौंपने के बाद इसके जो शुरुआत किए हुए ड्राइंग इनिशियली शुरुआत किए लोग में कन्या लोग थे, फिर बाद में काफी स्वरूप भी है, लेकिन मुख्य लोग बोले तो इसमें एक छोटे से भाई और एक छोटे से कन्या, ये दोनों इसका शुरुआत श्री गणेश।
दादी जी के द्वारा गौरी बहन को ईश्वरीय सौगात दी जा रही है। ईश्वरीय सौगात के साथ साथ ईश्वरीय प्रसाद के द्वारा भी गौरी बहन को सम्मानित किया जा रहा है।
इस भवन को गौरी बहन ने मदर होम करके शुरुआत में इसने अपने पेंसिल से बताया हमें और उसको पूरा रूप दिया है इस भवन का। नौजवान निखिल जोशी ने इसको पूरा सवारा है।
निखिल भाई को भी दादी जी के द्वारा ईश्वरीय सौगात दी जा रही है।
आने वाले जमाने में इनके लिए इसी प्रकार का 8000 आदमी बैठने का इस भवन देखने के बाद ये भाई को अभी ऑर्डर मिला है करने के लिए। विश्वकर्मा के रूप में पिछले 40 साल से जुड़े हुए मेरे प्यारे छोटे भाई नंदू पटेल और उनके साथ अनिल पाटिल रहेंगे, तो इधर उन दोनों को बुलाना चाहता हूँ राजी के स्वागत लेने के लिए। उसके साथ साथ संजय पटेल भाई भी है, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा इधर।
जिनका नाम लिया जा रहा है, कृपया वो जल्दी जल्दी मंच पर आएंगे।
अनिल पाटिल, संजय पटेल, यहाँ जमानों से रात दिन करके यहाँ बैठे हुए भाई रहेंगे तो ये अंदर आवे, अगर नहीं रहेंगे तो उनके स्वागत नंदू भाई ले ले रहे उनसे। हाय क्या ओके।
इस विशाल जगदम्बा भवन के निर्माण कार्यों में इन सभी ने अपना हड्डी हड्डी लगाया और इसी के कारण दादी जी के कर कमलों द्वारा इन सभी का आज यहाँ सम्मान हो रहा है।
पेंसिल से रेखा लिखाने वाले तो निकाल देते हैं, विश्वकर्मा के रूप में खड़े हुए ब्रह्म काल में 3:30 बजे ये स्वागत इन्होंने खड़े रह के किया है ये नंदू पटेल ने। इसी के साथ साथ उसके सहयोगी केतन खत्री, राजेंद्र सिंधे, सागर भरवरकर, ये तीनों को भी मैं आमंत्रित करेंगा। आज भी आखिरी वक्त है लेकिन आने वाले और 6 महीने भी इनके ऊपर यह जिम्मेदारियां आए, यहां खड़े रहकर यह काम कराएंगे और यहां ट्रेनिंग देंगे लोगों को यह भवन चलने के लिए। इसी इसके अंदर एक दीपक भाई करके, बीके दीपक भाई करके सेवादार सेवा भाई है, अगर वो यहां रहे तो यहां मंच पे आवे, ऐसा हमारी गुजारिश है। यस, ब्रह्म कुमारी सेवादार बीके दीपक भाई, मीरा सोसाइटी के जुड़े हुए दीपक इस भवन के विश्व पिता मान करके मैं लेऊंगा, मेरे साथ और कंधे में कंधा लगा के पिछले 40 साल से ज्यादा आर्किटेक्ट के स्वरूप में काम करने वाले सतीश जोशी साहब, ये हमारे निखिल जोशी साहब के विश्व पिता मां हमारे और उनके पिता ही है। इस छत को छत करीबन 15-16 एजेंसी लोग हाथ उठा दिया, हम इस वक्त में आपको दे नहीं पाएंगे, सारा भारत भी मैं ढूंढ लिया अभी मेरे को कोई नहीं मिला। उस वक्त मेरे बहुत करीब के मेरे छोटे भाई, उन्होंने ये मेरे दिया हुआ संकल्प को चैलेंज लिया है ये छत बिठाने के लिए। मिस्टर अजय भंडारी यहां आए हैं, ये हमारी गुजारिश है। इसी प्रकार के हमारे साथ दिए हुए उतने ही समय 40-45 साल मेरे साथ जुड़े हुए मेरे छोटे भाई जनक भाई भी इधर आए हैं, ऐसा ये दादी का गुजारिश है उनके लिए। इसी के साथ साथ लास्ट वक्त में ये सारे गिलास के जिम्मेदारियां, ग्लास का डोर का सारे जिम्मेदारी लिए हुए है विराज वसवाल जी, शायद इस वक्त यहां नहीं है, विराज वसवाल जी के तरफ है उनके माथोश्री इधर आके वह स्वीकार करे, ये हमारी धर्म विनती है।
भगवान तो बड़े अच्छी तरह से गाड़ी के दृष्टि के द्वारा ये भवन तो बन गया, लेकिन दादी अचानक एक विजिट इधर आ गई है कुछ घंटे के लिए। उस वक्त मेरे को बाजू में हंसा दीदी और हमारे दादी, मेरे भाई ऐसा ये जगदम्बा चमके और लोग उसको देख के इसके अंदर इसके मन लगा हुए, इसके साथ ये काम आपको जरूर करना है। ये हमारी दादी का डेढ़ महीने पहले अचानक आए हुए विजिट में ये उनके हमारे गुजारिश थी मेरी और आपके दादी का। इसके लिए मेरे हर आदमी को ढूंढ लिया, कोई मेरे सजेस्ट क्वेश्चन करने वाला कोई आदमी नहीं मिल रहा था। फिर भी एक मेरे को पुरानी याद आई, जो गृहस्थ मठ साहब, जो सीनियर मठ साहब, जिन्होंने 35 साल पहले मेरी पुणे महानगर में एक कमर्शियल पहली कॉर्पोरेट बिल्डिंग जो बन गई, उसके बोर्ड उन्होंने बना के दिया, वही बोर्ड भी आज तक मैं वापरा, कभी चेंज नहीं किया हूं। उसी तरह आने वाली नई पीढ़ी में तो धमाल लगा देते हैं, उस तरह या ये काम के लिए मेरा इच्छा पूरा करने के लिए प्रशांत मठ और मिस्टर बद्री नारायण, ये बाबा का बाहर लगे हुए चिन्ह और नेम बोर्ड 9 दिन में, मेरे गुजारिश देने के 9 दिन के अंदर इन्होंने कई ऑर्डर 26 का कैंसिल करके ये हमें बना के दिया। सही बाबा को नीचे लाने वाले आकाश है प्रशांत मठ, जरा जोरदार तालियां करें इनके लिए। उसके पीछे बुद्ध दान, उसके स्ट्रक्चरल का डिजाइन करने वाला मेरा बच्चा बद्री नारायण, इसके इक्वली जमाने बोले गए तो ये प्रशांत से भी कुछ ऊंचे बने में इसने मेरे को साथ देके 9 दिन में ऑर्डर देने के 9 दिन में इन्होंने दोनों खड़े किया है। बद्री नारायण सब भी इधर प्यार से आके दादी का स्वागत ले गए और आपके लाइफ बड़े अच्छी तरह से और इसी तरह शांत तरह से हर ब्रह्मा कुमारी का बोर्ड बना हुए, ये मेरी गुजारिश है। शुरुआत में इधर जमीन लेने के समय भी हमें कुछ मालूम नहीं था, शादी का मेरा जो 2013 में मेरा मुलाकात थी, और उसके अलावा दादी ने जब मेरे को यहां मिलने को 2015 में खुद आ गई थी, 16 में आ गए थे। उस वक्त ये काम के लिए दादी ने मेरे को अकेले, स्वर्गीय हमारे रमेश भाई और दादी, ये दोनों सिर्फ अकेले मेरे को ये जिम्मेदारी दी है। उसके साथ ये जगह देखने को मैं जब आ गया तो जगह से तो मैं देख के मेरे जमीन के नीचे मेरे पैर चले गई थी, ये कैसा करने का है करके। उस वक्त 7 दिए हुए इसके यहाँ का स्थानिक है और बहुत सेवा किया ये जगदम्बा भवन के लिए, सारे कंपाउंड वॉल के ईंट से लेके हर चीज के लिए रख के, इसके अलावा सबसे यहाँ का मराठा राज में हमें मराठा के तलवार लेके हमारे साथ खड़े थे ये काम शुरू करो करके। मेरे प्यारे भानुदास भाई इधर प्यार से आवे और दादी के लॉजिक से स्वागत लेवे और दादी के दृष्टि लेवे, ऐसे हर ब्रह्म कुमारी सेंटर को आपका सहयोग चाहिए, हर हजारों मराठा लोग के इधर सहयोग चाहिए करके मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करके यहां बुला रहा हूं। मैंने यहां इनके मदद के सिवाय ये नहीं खट सकता था, आजू बाजू के जमीन से लेके पानी से लेके टेंट बिठाने से लेके जहां मैं खुद खड़ा हूं आप काम करो, ये मेरा भाई है,
ये मैं बहुत कम दिन में ही इनको मिला हूँ, ये काम शुरू होने के टाइम में, उसके बाद मैं कुछ महीना पहले मिला हूँ, लेकिन फोन में मेरी हमेशा बात होती रहती है। इस तरह दिलावर और दिलदार और ये इम्पोर्टेंट, ये बीके भाई है, ये बड़ा, इसके लिए एक तालियां बजाओ। एक दीपक भाई, हाँ दीपक भाई इधर आवे, यहाँ का बहुत बड़ा प्यारा देव वन से टेंट से लेके आज तक हर आदमी को पानी के गिलास दे के तान बुझाने वाला मेरा दीपक भाई, ये मेरा सोसाइटी के भागीदार है, ये हमारा सोसाइटी के सेवादार है, ये ओम शांति। ये हाल बनते बनते इंपीरियल के डेकोरेशन में भी कुछ लोगों मेरे साथ जुड़ना पड़ा, जिनमें से हमारे आरसीकांत के प्यारे भाई कृष्णकांत भाई को भी था, मैं प्यार से निवेदन करता हूँ, दादी जी के स्वागत ले गए और दादी जी से दृष्टि ले गए, ऐसा हजारों काम आप करने के लिए। भवन का काम शुरू होने के टाइम शुरुआत कन्याओं के हाथ से हुआ है।